ओम नमस्ते जी। 422वीं श्रव्य कणिका सत्याद प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी स्वाध्यायशील महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। एकादश समुल्लास में आर्यवर्त देशीय मतमतांतरों की समीक्षा चल रही है। मूर्ति पूजा के दोष गिनाए जा रहे थे, साकार में ध्यान नहीं होता, इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि मन को स्थिर करना ही मूर्ति पूजा का उद्देश्य होता तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा के समस्त विधिविधान करने की आवश्यकता ही क्या थी। मूर्तियों के स्नान, चंदन लेपन, परिधान, अलंकारों से उन्हें सजाने की क्या आवश्यकता थी। भोग लगाने, आरती उतारने, चंवर डोलाने, पंखा करने, सुलाने, जगाने का अभिप्राय क्या है। मूर्ति के सामने खड़े होकर उसके आगे हाथ जोड़ने अथवा दंडवत साष्टांग प्रणाम करने का तात्पर्य क्या है। शंख घंटा घड़ियाल आदि का कोलाहल मन को स्थिर रखने में सहायक होता है क्या। वस्तुतः मंदिरों में प्रचलित मूर्ति पूजा में मन को स्थिर रखने का कोई प्रावधान नहीं है। मंदिरों का जिस ढंग से निर्माण किया जाता है उसी से यह स्वतः सिद्ध है कि उनका और उनमें स्थापित मूर्तियों का मन की स्थिरता से कोई संबंध नहीं है। यदि मूर्ति पूजा का उद्देश्य मन को स्थिर करने में सहायक होना होता तो उनकी बनावट दूसरे ही प्रकार की होती। बहुत से बड़े बड़े मंदिरों में उपासक यदि आसन लगाकर मन को स्थिर करने की भावना से मूर्ति के सम्मुख बैठे तो उन्हें मूर्ति का दिखाई पड़ना ही कठिन हो जाएगा। या फिर शिवालय इतने संकीर्ण होते हैं कि वहां एक समय में 4-6 उपासक भी नहीं बैठ सकते। मध्य में शिवलिंग, एक और पार्वती, दूसरी ओर उनके पुत्र गजानन, तीसरी ओर उनका वाहन वृषभ। अब उपासक किस पर अपना मन स्थिर करे। यदि शिवलिंग पर तो वहां अन्य मूर्तियों की स्थापना का क्या प्रयोजन। लोगों को वृषभानंदी की पूजा करते भी कभी देखा जा सकता है जो सर्वथा स्वाभाविक है। इस प्रकार मंदिरों का निर्माण यह सिद्ध करता है कि मूर्तियों की स्थापना मन को स्थिर करने के प्रयोजन से नहीं की गई। यदि मूर्ति पूजा का उद्देश्य मन को स्थिर करना होता तो मूर्ति की स्थापना किसी खुले स्थान में होती जिसके चारों ओर बैठकर उपासक योग छठे अंग धारणा का अभ्यास कर सकते। जब तक मन किसी भी सांसारिक वस्तु में लगा रहेगा परमात्मा का ध्यान नहीं होगा। जब किसी भी वस्तु विशेष का जिसमें ईश्वर और बाह्य जगत दोनों सम्मिलित हैं ध्यान किया जाएगा तो उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। यदि किसी मूर्ति को सम्मुख रखकर उसकी धारणा अथवा ध्यान किया जाएगा तो उस मूर्ति का पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात यह मूर्ति किसकी है, किस वस्तु मिट्टी या धातु की बनी हुई है, किसने बनाई है, कहां बनी है, कैसी बनी है। इस प्रकार मूर्ति का ध्यान करने से मूर्ति, मूर्तिकार और उसके कला कौशल का ही ज्ञान होगा, परमात्मा का नहीं। मूर्ति द्वारा हम केवल मूर्तिकार तक पहुंच सकते हैं। सूर्य चंद्र आदि पदार्थों का ध्यान हमें उसके निर्माता परमेश्वर की स्मृति दिला सकता है, किंतु मूर्ति पूजक को धारणा ध्यान समाधि की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहां तो मंदिर में जाकर मूर्ति के दर्शन मात्र से अथवा मंदिर की ड्योढ़ी की चौखट के स्पर्श मात्र से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में नवभारत टाइम्स दिल्ली के 7 मई 1991 के अंक में प्रकाशित यह समाचार देखने योग्य है। जैनाचार्य मुनि विद्यानंद जी ने महावीर जी में रविवार 6 मई को धर्मसभा को संबोधित करते हुए बताया, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाषाण की प्रतिमा की वीतरागी मुद्रा के दर्शन करने मात्र से सारे पापों की निर्जरा होने लगती है। दर्शन करने के लिए मंदिर जाने के विचार मात्र से पापों का नाश होने लगता है। जैन मत का अनुसरण करने वाले पौराणिकों में मान्य भविष्य पुराण में लिखा है, नैरंतर्येण यह कुर्यात् पक्षम सम्मार्जनार्चनम् युग कोटि शतम सागरम ब्रह्मलोके महीयते कपटेनापि यह कुर्यात् ब्रह्मशालां समानद नद सम्मार्जनादि वै कर्म सोपि तत्फलम् आप्नुयात् कल्पकोटि सहस्रैस्तु यत् पापं समुपार्जितम् पितामह घृतस्नानम् दहत्यग्निरिवेन्धनम्। अर्थ, एक पक्ष तक यदि कोई निरंतर ब्रह्म के मंदिर में झाड़ू देवे तो वह 1 अरब युग तक ब्रह्मलोक में रहता है। जो कोई कपट और छल से भी ब्रह्मा के मंदिर में झाड़ू और लेपन आदि करता है उसको भी वही फल मिलता है जो श्रद्धा से करने वाले को मिलता है। करोड़ों कल्पों में जो पाप संचित किया है वह ब्रह्म को घी से स्नान कराने से दूर हो जाता है। इस प्रकार पुराणों में स्नान, मार्जन, आचमन, धूप, दीप, मंदिर निर्माण, अनेक कृत्य जो देव मूर्तियों के प्रति किए जाते हैं उनका बड़ा महात्म्य वर्णन किया जाता है। इससे सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि मूर्ति पूजा का ध्यान या मन की स्थिरता से कोई संबंध नहीं है। लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करके उनका शोषण करने वाले असामाजिक तत्वों का धंधा मात्र है। अब मूर्ति पूजा से होने वाले हानियों को महर्षि दयानंद जी ने सत्याद प्रकाश में गिनाया कि मंदिरों के निर्माण, साज सज्जा, रख रखाव, पूजा अर्चना आदि पर राष्ट्र का करोड़ों रुपया व्यर्थ व्यय होता है और उसकी अपार संपत्ति शत्रुओं के आक्रमण का कारण बनती है। यदि भारत के समस्त देवालयों की संपत्ति का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों में व्यय किया जाए तो उससे देश का अनेकविध विकास हो सकता है। तिरुपति, नाथद्वारा, वैष्णो देवी आदि के मंदिरों में से एक एक की आय के एक एक विश्वविद्यालय चल सकता है। समस्त मंदिरों की सामूहिक आय से देश भर में विद्यालयीन शिक्षा निःशुल्क कराई जा सकती है। धनी लोग तथा संगठन अपनी लोकेशना की तुष्टि के लिए नित्य नए और एक से बढ़कर एक भव्य मंदिरों का निर्माण करते जाते हैं, जबकि समाज के कल्याणकारी कार्यों के लिए उनकी जेब सदा खाली रहती है। जिन मंदिरों और धर्मस्थानों में स्त्री पुरुषों का अमर्यादित आवागमन रहता है वहां व्यभिचार वृद्धि स्वाभाविक है। ऋषि दयानंद ने मुंबई में वल्लभ संप्रदाय अनुयायी गोस्वामी महाराज के काले कारनामों को प्रत्यक्ष देखा सुना था। महाज लाइब्रेरी केस, लाइबल केस के द्वारा किस प्रकार वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में होने वाली पाप लीलाओं का भंडाफोड़ हुआ था, यह उस समय के समाचार पत्रों व अन्य प्रकाशित साहित्य वल्लभ कुल दंभ दर्पण, वल्लभ कुल चरित्र दर्पण, वल्लभ कुल छल कपट दर्पण आदि से स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य की स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति होती है। ईश्वरोपासना और धर्म का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को ऊंचा उठाना है, परंतु मूर्ति पूजा ऐसी विधि है जो उसे मूर्ख बनाए रखना चाहती है। स्वार्थी पंडे पुजारी उन्हें उपदेश देते हैं कि मूर्ति के आगे हाथ जोड़ो और जो कुछ चढ़ावा अपने हाथ लाए हो उसे हमारे हवाले करके चलते बनो, बस यही मूर्ति पूजा है। इससे मनुष्य भीरू और अंधविश्वासी बनकर अंधे नैव नियमाना यथांधा की भांति मार्ग से भटक जाता है। यही कारण है कि शताब्दियों के अज्ञान और अंधकार के पश्चात भी जनसाधारण का जीवन मूर्तियों के निरंतर संपर्क में रहने वाले पंडे पुजारियों जो कि पूजा धन अरि यानी पूजा के शत्रुओं की अपेक्षा आज भी अच्छा है। मोक्ष प्राप्ति का तो एकमात्र साधन ज्ञान और तदनुसार आचरण ही है। अब मूर्ति पूजा से सांप्रदायिक विद्वेष भी तो बनता है। विभिन्न संप्रदायों के द्वारा संचालित मठ व मंदिर अपने अपने इष्ट देवों व उनकी अर्चना को महत्व देते हैं, इसलिए मंदिरों और उनके पुजारियों की पारस्परिक स्पर्धा समाज को विभिन्न वर्गों में बांटकर राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। एक दूसरे के इष्ट देव की निंदा स्तुति के कारण लोग अंततः एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। समस्त पुराणों में ब्रह्मा विष्णु शिव तथा शक्ति की पूजा का ही विशेष रूप से वर्णन है, किंतु प्रत्येक संप्रदाय का पुराण अपने अपने उपास्य देव को ही सर्वोपरि बताते हुए अन्य संप्रदायों के उपास्य देवों की निंदा करता है। वैष्णव पुराण विष्णु को महान और शेष ब्रह्मा शिव शक्ति को निकृष्ट सिद्ध करते हैं और उनके उपासकों को नरकगामी बताते हैं। इसी प्रकार शिव पुराण शिव की महानता तथा अन्य देवों की निंदा करता है। शाक्तों के पुराण देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की बड़े ही कठोर शब्दों में आलोचना की गई है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के अनुयायियों के प्रति निसंकोच अपशब्दों का प्रयोग करता है। इतना ही नहीं, इन पुराणों में इन देवों के पारस्परिक तुमुल युद्ध और जय पराजय का भी वर्णन मिलता है, जिसका कुछ दिग्दर्शन हम पाठकों को आगे करा रहे हैं। तो ये बहुत सारी कमियां पौराणिक काल की इन सारी सांप्रदायिक प्रतिद्वंदिता से सिद्ध है कि चाहे मूर्ति पूजा का अधिकारण कुछ भी रहा हो, किंतु कालांतर में इसका विस्तार व्यावसायिक बुद्धि के माध्यम से हुआ और आज भी यही भावना इसकी असारता और दोषों को जानते हुए भी इसके परित्याग में बाधक है। जिस प्रकार एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सर्वश्रेष्ठ, दूसरे की वस्तु को निकृष्ट बताकर ग्राहकों को अपनी दुकान पर खींचने का प्रयत्न करता है, ठीक यही दशा इन सांप्रदायिक लोगों की है। वे अपने अपने देवता और तिलक छाप की प्रशंसा करते, दूसरों की निंदा करके अपनी अपनी दुकान जमाने का यत्न करते हैं। अन्यथा यदि समस्त उपास्य देवों में एक ही ईश्वर की भावना होती तो इस प्रतिद्वंद्विता का कोई कारण ही नहीं था। बहुदेवतावाद का यह स्वाभाविक दुष्परिणाम है कि पौराणिक काल की यही व्यवसायपूर्ण सांप्रदायिक स्पर्धा आर्य जाति की आंतरिक कलह का मुख्य कारण बनी। उसी मनोवृत्ति का संक्षेप में यहां पर थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया। ओम। आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं। ओम।